नमस्कार, सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत एक शायर अमीर अजीज की छोटी सी नज़म से करते हैं। उन्होंने जहांगीरपुरी के संदर्भ में लिखा, हजार आंसू हजार आहें, दो जोड़ी सपने दो मुट्ठी खुशियां, एक खिलौना दो तीन सिक्के और चार बर्तन। दो जोड़ी सपने दो मुट्ठी खुशियां, एक खिलौना दो तीन सिक्के और चार बर्तन। एक लंगड़ी सी कुर्सी, एक तख्ती की टेबल, एक कुरान मजीद, एक छोटी सी रेहल, मरहूम दादा की तस्वीर, नानी की ऐनक, कुछ किस्से कहानियां, कुछ जिंदा रूहें, अब्बा अम्मी के उम्र भर की मेहनत, अब्बा अम्मी के उम्र भर की मेहनत, उम्र भर की हसरत, ये घर जो मलबे के ढेर में बदल चुका है, ये घर जो मलबे के ढेर में बदल चुका है, ये सब कुछ है इसके नीचे, और इस मलबे के ढेर के बहुत नीचे है एक देश, मेरा देश, तुम्हारा देश। जहांगीरपुरी के बारे में सोचता हूँ तो बहुत अफसोस होता है, सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्होंने ये तकलीफ़ झेली कल और 16 अप्रैल से जो झेल रहे हैं, इसके लिए भी हमारे मुल्क को क्या होता जा रहा है। बात जब बनाना चाहती है सरकार तो उसके पास बहुत तरीके हैं कुछ कहने के, लोगों को लोकसभा पेश आने के बहुत तरीके हैं। उसमें एक उम्मीद होती है कि हर नागरिक का सत्कार होगा, सम्मान होगा, उतना ही जितना कि हम प्रधान सेवक का करते हैं। वो एक उम्मीद होती है संवैधानिक तरीके से कि हर नागरिक बराबर है, उसका मज़हब कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, उसका रंग रूप जो भी हो, हर व्यक्ति बराबर है। इसके आधार पे हम संविधान हमारा बना, उसका नाम संविधान। सम माने बराबर, विधान माने नियम। जब सारे नियम बराबरी से लागू होते हैं तब वो संविधान होता है। उसमें अगर हम ऊपर नीचे करें, आगे पीछे करें तो संविधान नहीं हो जाता है, वो असंविधान हो गया है। तो अब आज की तारीख में हम संविधान के नहीं असंविधान की तारीख उससे चल रहे हैं। हुआ क्या है देखिए, 16 अप्रैल को तीन जुलूस निकले, दो शांतिपूर्ण, तीसरे में बच्चे लाठियां तलवारें और एक इरादा कि किस तरह लोगों को भड़काओ, इस हद तक भड़काओ कि वो कुछ पथराव करें, जिससे हम और पथराव करें, पुलिस को बुलाएं, एक ऐसी शुरुआत हो जाए कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। कई जगहों पे और तो भगवाधारी कहते हैं कि जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है इस देश में हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। दूसरा कहता है हम काली सेना है, जब तक कि सभी जमींदोज नहीं हो जाते तब तक हम सांस नहीं लेंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारी सेना उनकी सेना से बड़ी है। और इस तरह की जब बातें होती हैं और सरकार कुछ नहीं कहती, और कहती क्या है, जब जिग्नेश मेवानी जिन्होंने जो भी किसी पार्टी से थे उनने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली कांग्रेस, उसके बाद से किसी एक आदमी ने लिख के दे दिया किसी पुलिस के थाने में, इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री को बोला है कि आखिर तुम शांति का संदेश दो, और शांति का संदेश देना एक जुर्म है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको लेकर के कुछ वारदातें हो सकती हैं, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और आसाम से पुलिस पहुंचती है गुजरात, और रात में 12 बजे 11:30 बजे एक एमएलए को, जो कि हमारा चुना हुआ एमएलए है, प्रतिनिधि है, उसको गिरफ्तार करती है आसाम ले जाने के लिए। ये क्या हो रहा है? फिर हमारे गृहमंत्री कहते हैं कि सबसे जो बुरी चीज़ होती है दुनिया में वो आतंकवाद होती है, लेकिन ये तो राज्य का आतंकवाद है। कैसा लगता है आपको? कि नहीं लगता कि राज्य में कोई नियम कानून बचे नहीं है? जो जिसने चाहा कर लिया, जो अगर राज्य में है कुछ भी कर दे, उससे राज्य का आतंकवादी है तो और क्या कहेंगे आप? तो किस्सा यह है कि 16 अप्रैल को जो बात शुरू हुई, चूँकि हिंदुत्व के जो लुम्पन थे, जो कंवार उजट और इस तरह के लोग थे, उन्होंने तय कर रखा था बजरंग दल के नाम पे कि हम कुछ खुराफात करेंगे, उनको उकसाएंगे। उकसाया, अगर किसी ने एक पत्थर फेंक दिया तो अब तो हम 100 पत्थर फेंकने के लिए मुफ्त, हमारी फ्रीडम आ गई, आज़ादी हो गई है। अगर उसने एक पत्थर फेंका तो हम 100 फेंकेंगे, कहेंगे एक पत्थर उसने फेंका। और पुलिस वाले हमारा साथ देंगे। तय हो चुका है कि पुलिस वाले हिंदुत्व वालों को हमेशा कहेंगे आप सही हैं, मुसलमान हैं तो आप गलत हैं, हिंदुत्व वाला जो भी हो सही है, मुसलमान जैसा भी हो गलत है। अगर आपने इस तरह से बांट दी चीज़ें कि मुसलमान गलत है और हिंदू हिंदुत्व सही है, हिंदू तो छोड़िए, हिंदू कहने में अगर यही हिंदुत्व है तो हिंदू कहने में शर्म आएगी हम सभी को। हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म हिंदुत्व नहीं है, इसीलिए हमें उस पर गर्व है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वो है हिंदू धर्म, जो हिंदुत्व, जो लाठी लेके चले, जो बर्छा लेके चले, जो आरा लेके चले, तलवार लेके चले, जो कहे कि कोई काटा जाएगा, कोई हिंसा की बात करे, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्ववादी आतंकवादी है। तो हिंदुत्व आतंकवादियों की जो बात है वो हमें याद करनी पड़ेगी। हिंदुत्व आतंकवादी, सरकार आतंकवादी, और जो लोग शांत हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं। जिग्नेश मेवानी जिसने कुछ नहीं किया, उसने शांति की बात की, उनका ट्वीट पढ़िए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आप शांति के साथ यहाँ आइए और शांति की बात फैलाइए। उसको उन्होंने कहा कि इससे अशांति फैलेगी। किसने, किसी अनजान आदमी ने, कहाँ, आसाम में, उस पर आसाम की पुलिस पर चली आई। इस तरह की जो एक जो इसका माहौल बन गया है, तो फिर क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ कोई पहुँचा, वो मदनी साहब पहुँच गए कल, वो पहुँचे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 11 बजे, वो 11 बजे व्हाट्सएप पहुँच गया मेयर के पास। मेयर कौन है, एक सरदार जी है। अब आप ये देखिए, सरदार जी मेयर हैं, भाजपा का नेता लिखता है मेयर को, सरदार जी को, कि आप ये करिए, इन लोगों को सजा दीजिए, और बुलडोजर तैयार रहते हैं और 1500 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। अब ये सोचिए कितनी तैयारी थी सरकार की, जब वो दंगे रोकने के लिए उनके पास 50 लोग नहीं थे, 10 लोग नहीं थे, और उसके बाद दंगा कराने के लिए 1500 पहुंच गए। खैर वो भी हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसका मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को हमने जगह दी है कि अगर वो फैसला करे तो वो फैसला चाहे जो भी स्थिति हो मानना पड़ेगा, इसी उसको सर्वोच्च कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं। लेकिन सरकार के छोटे से अदने से अफसर ने उसका अंगूठा दिखा दिया, कहा जब तक हमारे पास कागज नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। आपके मेयर को व्हाट्सएप किया गया, आपके मेयर को कोर्ट ने व्हाट्सएप किया, 11 बजे किया, उसकी तो डेट स्टैम्प होती है। खैर तब एक CPM की वृंदा करात पहुँच गई, उन्होंने कहा, खुद खड़ी हो गई कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तब तक और लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि आपके फैसले के बाद भी ऐसा हो रहा है तो थोड़े नाराज हुए कोर्ट वाले, उनका फौरन उनको बताओ, तब जाके बात रुकी। तब तक तो उन्होंने काफ़ी दो किलोमीटर साफ कर दिया था। ये ऐसा कब होता है, जब सरकार योजना बना लेती है कि ऐसा करना ही है, वो तरीके निकालती है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जाए बिना लगे कि हमने अवहेलना की है। ये तिकड़े में चलती रहती हैं, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कैसे लोग मैनेज करते हैं। अब आज फिर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई, उस पर सब बहस हुई, उन्हें कहा गया कि ऐसा हो रहा है, दुष्यंत दवे थे, कपिल सिब्बल थे, इन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसा हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा ये तो बात जो है, ये किस्सा तो सिर्फ इसी केस का है, इसको हम देश भर का नहीं बना सकते। खैर तो उन्होंने दिल्ली के लिए भी 2 हफ्ते की जगह दी है, 2 हफ्ते का मोहलत दिया है कि वो कॉरपोरेशन अब बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि अगर उन्होंने कोई प्रोसेस प्रोसीजर ठीक से नहीं किया है और ऐसा हुआ है कि जानने के बाद भी उन्होंने काम जारी रखा तो हम उसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। अब 2 हफ्ते बहुत होते हैं, इस बीच में पता नहीं जजों के साथ क्या सुलूक किया जाएगा, क्या बताया जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, क्या आगे होगा, पता नहीं। लेकिन ये है कि इस व्यवस्था में न कोर्ट का मतलब है, किसी भी संस्था का मतलब नहीं है, और सबसे शर्मनाक जो है वो है चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं। मीडिया ने मीडिया के नाम पे कालिख पोत दी है। इतनी शर्मिंदगी मुझे अखबार वाला होने के नाते, संपादक होने के नाते, एक अखबार की स्थापना करने के नाते कभी नहीं हुई जितनी आज होती है, देख के कि हमारे यहाँ मीडिया क्यों इतना पालतू कुत्ता बन गया है, क्यों गोदी मीडिया बन गया है, क्यों लैपटॉप कहलाता है, उसको शर्म क्यों नहीं आती, क्यों वो सरकार का पिट्ठू बन गया है, क्यों नहीं जनता के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में क्यों नहीं है, जनता के पक्ष में क्यों नहीं है, क्यों बन गया वो पिट्ठू सिर्फ सरकार का और हिंदुत्व का और हिंदुत्व आतंकवाद का, सरकारी आतंकवाद का। वो क्यों हमेशा ढूंढता रहता है सरकार की पैरवी कैसे करें, वो क्यों नहीं पूछता सवाल? उसका काम है सवाल पूछने का, सरकार जी तुमने ऐसा क्यों किया, सरकार जी ये ठीक था कि नहीं था, वो क्या करता है? नहीं, ये सरकार ने बोला था, सरकार ठीक रही होगी, बाकी सब गलत है। मैं अब तक रोजाना तमाम लोगों से सुनते हुए तय हूँ, कुछ परेशान सा हो गया हूँ कि वो कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा सरकार के खिलाफ नहीं, मैं आपके बारे में बोलता हूँ, मैं सबके बारे में बोलता हूँ, मैं संविधान के साथ चलने की कोशिश करता हूँ, मैं शांति के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ आखिर तुम दंगा क्यों कराना चाहते हो, आखिर मुसलमानों को क्यों नीचे दिखाना चाहते हो, आखिर क्यों उनके खिलाफ जा रहे हो? उससे वो कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप शांति की बात करें जैसे जिग्नेश मवानी ने की, तो लोग कहते हैं आप अशांति फैलाएंगे। जो अशांति फैला रहे हैं जानबूझ के, जो तरह तरह की बातें करते हैं, इस देश में रहना है तो श्रीराम कहना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं, नरसंहार की बातें करते हैं, उनको पकड़ने के बाद छोड़ दिया जाता है। पकड़ा जाता नहीं, पहली बार 100 में एक पकड़ा गया तो उसको छोड़ देते हैं। जिस तरह से वो जो एक जिन लड़कों ने सुली पाई और जिस तरह की वारदातों को शुरू किया था, जब उनकी उम्र चाहे जो भी हो, 20-21-22 साल की हो, उनको टेंडर एज का बोलना ऐसा कोर्ट करता है, उनको छोड़ देता है। तो ये बेसिकली मैसेज, संदेश बहुत साफ है, अगर आप कुछ भी करेंगे मुसलमानों के खिलाफ तो आपको हर बात की इजाज़त है। अगर आप मुसलमान हैं, कितना भी अच्छा करेंगे, आप चाहे शांति की बातें करें, उसको शांति की तरह लेंगे। ये जो है ऐसा माहौल तुमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था अभी तक। ये जानबूझ के सरकार के प्रश्रय से, सरकार के सिर्फ समर्थन नहीं है, इसमें लगता है कि सरकार पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा लगता है। तो हमें अच्छा लगा जब हमारे गृहमंत्री ने कहा कि सबसे जो बुरी चीज़ होती है आतंकवाद होती है, उसका मतलब ये भी है जो हिंदुत्व आतंकवाद बुरा है उसे रोकिए, सरकारी आतंकवाद बुरा है उसे रोकिए। आतंकवाद सिर्फ वो नहीं होता जो आप कहते हैं, जिससे आतंक फैले वो चाहे सरकार हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे जो भी हो, वो आतंक है। जिससे आतंक फैले वो आतंक है। आप में आपके जो आगे पीछे लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं, उनको रोकिए। अगर आप मान लेंगे कि एक वर्ग बुरा है और जो उसके साथ बोले वो बुरा है, सभी लोग बुरे हैं। अब आप जिग्नेश मेवानी तो हिंदू हैं, चूँकि आपकी पार्टी का नहीं, उनको आप परेशान कर रहे हैं। जो आपकी पार्टी का नहीं है वो भी आतंकवादी है। जो कुछ भी सही बात बोले वो आतंकवादी है, शांति की बात बोले आतंकवादी है, संविधान की बात करे वो आतंकवादी है। तो ये जो एक ऐसा माहौल है, इसमें सच सच नहीं है, झूठ झूठ नहीं है। जो सरकार कहे वो ठीक है, जो कोई और कहे वो ठीक हो ही नहीं सकता। फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सिर्फ सरकार में कितने लोग होते हैं, सब मिला के 5-6 हज़ार जो आप जो MLA MP हैं, उनमें भी आप कह रहे हो कि जो जो रूलिंग पार्टी खिलाफ बोलेगा वो गलत है, बड़ी परेशानी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आज की बहस हुई है, कल की बहस हुई है, उस पर ये नहीं लगता कि उनमें अपनी जो उनकी जो भूमिका है, उनकी भूमिका क्या है कि अगर हमारे जनतंत्र का, हमारे गवर्नेंस का कोई हिस्सा कुछ ज़्यादा हो जाए, लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो उनको उस पर उनकी जिम्मेदारी बनती है उसे ठीक कराने की, रास्ते निकालने की, कानूनी रास्ते निकालने की। आजकल 100 वोटों की बात होती है, वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करते वो, क्योंकि उनको भी वो भी जैसे गोगोई साहब ने कहा था जो पुराने चीफ जस्टिस हैं, कि जज भी आसमान से नहीं टपकते, वो भी हमारा हिस्सा है, वो भी उतने डरे रहते हैं, वो भी उतने ही, उनका तो भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा कहा था, वो भी वैसे ही जैसे सभी प्रश्न। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है। हम तो उम्मीद करते हैं हमारे न्यायपालिका से एक ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जिसमें सब उनकी तरफ देखें, उठा के आँख उनके सम्मान के साथ। हम वही करना चाहते हैं, सब सबका सम्मान करना चाहते हैं, चाहे मीडिया के हों, चाहे सरकार के हों, चाहे न्यायपालिका के, सबका सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन जो हो रहा है, आप बताइए क्या करेंगे आप इस पर? एक संभ्रांत नहीं, इस पर समझदारी की बहस होनी चाहिए, इस पर हम सब लोगों के साथ लेकर चल सकें। और इस पर बहस में अब कोई कोताही करेंगे, कोई देरी करेंगे तो उससे देश का नुकसान होगा। कई लोगों ने जिन्होंने इतिहास पढ़ा है जानते हैं कि जब भी किसी धर्म के नाम पे कोई वाद खड़ा होता है तो उस समाज की का नुकसान ही होता है, उस राष्ट्र का नुकसान हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो हमेशा जकड़ जाता है किसी ऐसे जो अदृश्य पत्थर हैं उनमें। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूं।